Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं उसे ईरान रेडियो ने तैयार किया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। मैं हूं अख्तर रिज़वी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अमंग द ईरानियंस। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको ईरानियों के बारे में कुछ दिलचस्प हकीकत बताई थी। आपको ये भी बताया था कि एक ईरानी कैसे घर के मालिक हो जाते हैं और किस तरह से वे अपने घरों को सजाते संवारते हैं। हमने आपको उनकी संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। एक यूनानी महिला पर्यटक सूफिया अकातुलाकी के शब्दों में ईरानियों के बीच परिवार, दोस्तों और परिचितों के बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया था। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि सूफिया ने इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद यानी 80 के दशक में ईरान की यात्रा की थी। दरअसल वो ईरान इराक युद्ध की समाप्ति के 7 महीने बाद ही ईरान गई थी। सूफिया ने अपनी ईरान यात्रा के परिणामों को अमंग द ईरानियंस नामक पुस्तक में प्रकाशित किया है और इसमें ईरानी संस्कृति और रीति रिवाजों को बयान किया है। इस पॉडकास्ट श्रृंखला में हमने सूफिया की जबान में ईरान का परिचय देने की कोशिश की है। ईरानियों में परिवार सामाजिक मॉडल की मुख्य इकाई और नींव समझा जाता है और कुछ पश्चिमी समाजों के विपरीत ईरान में बड़े परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम इस मुद्दे को एक आकृति बनाकर दिखाना चाहें तो हम आपस में मिले हुए वृत्तों का एक सेट बना सकते हैं जिनका केंद्र एक ही हो और निकटतम परिवार के सदस्य सबसे भीतरी वृत्त में हों। यदि कोई व्यक्ति कुंवारा हो तो उसके माता पिता और भाई बहन, और यदि वो विवाहित है तो उसकी पति और पत्नी या बच्चे सबसे आंतरिक घेरे में होते हैं। अगले घेरे में माता पिता, भाई बहन और उनके अपने परिवार और पति पत्नी शामिल होते हैं, और इसी तरह अगले घेरे में चाचा चाची, मौसा मौसी, पत्नियां या पति और उनके बच्चे शामिल हैं। ये सभी रिश्ते उस सामाजिक नेटवर्क का आधार हैं जिससे परिवार का प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। हो सकता है कि ये बातें आपके लिए नई ना हों और आपको ज़्यादा अच्छी भी ना लगें, लेकिन इन बातों को बताने का मकसद आपको बाद में पता चलेगा। सामान्य तौर पर पुराने समय से ही परिवार ने कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन आज समाज के विस्तार की वजह से इनमें से कुछ भूमिकाएं वित्तीय संस्थानों, देखभाल व निगरानी केंद्रों, परिवार परामर्शदाताओं और यहां तक कि डॉक्टरों द्वारा भी निभाई जाती हैं। ईरान में रिश्ते ऐसे होते हैं कि अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए तो सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते उस समस्या को सुलझाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस बात को ज़्यादा समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ ताकि मैं बेहतर ढंग से समझा सकूँ कि मेरा मकसद क्या है। मिसाल के लिए, यदि आपको अपने घर के हालात ठीक करने के लिए 1 महीने की कम अवधि के ऋण की ज़रूरत होती है तो फिर आपका चचेरा, ममेरा या फुफेरा भाई आपकी मदद कर सकता है। अगर आपको अपने बच्चों के बिना किसी विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया है तो आपकी माँ या मौसी आज रात उनकी देखभाल कर सकती हैं। यहाँ पर आपको बड़ी फैमिली के कुछ फायदे नजर आएंगे। बात को यहीं पर ख़त्म नहीं करते बल्कि आगे बढ़ाते हैं। अगर आप पति पत्नी के बीच कुछ कहा सुनी हो गई है तो आप किसी बुजुर्ग से मध्यस्थता करने और सुलह सफाई कराने के लिए कह सकते हैं। अगर आपके 10 साल के बेटे को सर्दी जुकाम हो जाए तो उसकी चाची उसके लिए चिकन सूप बना सकती हैं और रास्ते में पड़ोस में स्थित मेडिकल स्टोर या प्रोविज़न स्टोर से हर्बल टी खरीद कर आपके लिए ला सकती हैं। इसके लिए परिवार और सोशल ग्रुप्स ईरानियों के दैनिक जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये भूमिका ईरानियों के लिए इतनी महत्वपूर्ण और जरूरी होती है कि जैसे ही वे किसी दूसरे देश में जाते हैं वे ऐसी दुकानें या रेस्तरां की तलाश करते हैं जहां अन्य ईरानी जाना पसंद करते हैं और इस तरह से अपने पिछले सोशल नेटवर्क को नए सोशल नेटवर्क से बदल देते हैं। लेकिन ईरानियों के बीच मित्रों और परिचितों के बीच रिश्ते भी बहुत दिलचस्प होते हैं। परिवार या दोस्तों और परिचितों का ग्रुप और सामान्य तौर पर सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते न केवल लोगों की मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं बल्कि बिना किसी चिंता के चीज़ों को बेहतर और अधिक आसान बनाने के लिए उनकी अन्य ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। एक व्यक्ति के परिवार, दोस्तों, परिचितों, सहकर्मियों और पड़ोसियों का विस्तृत दायरा एक विश्वसनीय और भरोसे योग्य सहायता नेटवर्क बनाता है जिसका उपयोग इंसान ज़रूरत के समय कर सकता है। ये चीज़ ऐसी है जिसको दुनिया में लगभग सभी इंसान इस्तेमाल करते हैं। इस बड़े ग्रुप में किसी को पता होना चाहिए कि उसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें कहाँ मिल सकती हैं या कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति को जानना चाहिए जो उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकता हो। मिसाल के तौर पर जब हम अपने बेटे के लिए एक नए स्कूल की तलाश में थे तो हुसैन की माँ के एक रिश्तेदार ने जो ज़िले के शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे हमारे बेटे के लिए सही स्कूल में एडमिशन में हमारी मदद की और उन्होंने ये बताया कि जिस स्कूल के बारे में बताया है वो बेहतरीन स्कूलों में है। उन्होंने हमें उस स्कूल में एडमिशन फॉर्म के साथ एक अनुशंसा पत्र भी दिया लेकिन सोर्स केवल विशेष अवसरों के लिए ही प्रभावी नहीं होता। कई मामलों में ईरानी अपने परिवार और दोस्तों को दर्जी, डॉक्टर या निजी ट्यूटर्स से मिलवाते हैं जो ज़्यादातर मामलों में अपने नए ग्राहकों पर विशेष ध्यान देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बेशक एक फ्रेंड सर्किल से संबंधित होने के लिए पारस्परिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति ग्रुप के सदस्य के रूप में उसी इंसान या परिवार के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कुछ मांगता है तो भविष्य में उसकी मांग को पूरा किया जाता है। इस सामाजिक कर्ज को जिम्मेदारी या दायित्व का बोझ नहीं माना जाता बल्कि ये दैनिक जीवन के लेन देन में परस्पर क्रिया का मुख्य तत्व है। ईरानियों में एक ग्रुप से जुड़े होने की भावना सुरक्षा और अकेले न रहने की भावना जगाती है। ईरानियों के बीच इंट्राग्रुप और आउट ग्रुप संबंधों के बारे में आपको एक चीज बताना जरूरी समझती हूँ। एक दिन तेहरान के केंद्र में एक बड़ी और व्यस्त फार्मेसी में मैंने काउंटर पर अपनी दवाओं का नुस्खा दिया। काउंटर संचालक अपने सहकर्मी के साथ गर्मजोशी से बात कर रहा था। मुझे लगा कि क्योंकि वो मुझे नहीं जानता, इसीलिए उसने मेरी तरफ खास तवज्जो नहीं दी। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि मामला ऐसा नहीं था। थोड़ी देर बाद फार्मेसी का मालिक मेरी तरफ मुड़ा और बिना कुछ कहे मुझसे दवा का नुस्खा ले लिया। उसने दवा तलाश करना बंद कर दिया और उस आदमी के पास गया और मुस्कुराकर उससे बात करने लगा और उसका हाल चाल पूछने लगा। उसने कहा कि वो उसकी कैसे मदद कर सकता है। उस आदमी ने भी उसके सलाम का जवाब दिया, उसका हाल चाल पूछा, उसे धन्यवाद दिया और लाइन के आखिर में जाकर खड़ा हो गया। फार्मेसी का मालिक फिर से मेरी दवाएं ढूंढने लगा और अपनी जगह पर लौट आया और उसके हाथ में मेरी दवाएं थीं जो उसने मेरे हवाले कर दी। ऐसे अनुभव के बाद आपको ईरानियों के आतिथ्य प्रेम और उनकी दोस्ती पर शक हो सकता है, जबकि बाद में आपको इसके खिलाफ ही चीज़ें नज़र आएंगी। जब आप इस मामले के पीछे के रहस्य समझेंगे तो आपके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे में वो ग्राहक दुकानदार का परिचित था, अर्थात फार्मेसी मालिक के मित्रों व परिचितों में से था, जबकि मैं अजनबी थी और मैं उसके फ्रेंड सर्किल से बाहर थी। हालांकि इस मामले में मेरी या फार्मेसी संचालक की उस परिचित व्यक्ति की दोस्ती में कोई कमी नहीं हुई। मैंने परिवार में, पारिवारिक दायरे में और वर्किंग ग्रुप्स में रिश्तों के बारे में जो कुछ भी कहा उसके अनुसार अंदरूनी रिश्तों की विशेषताएं, आपसी मदद, निस्वार्थता, मजबूती व गहराई और सम्मान जैसी होती हैं। हालांकि आउट ग्रुप सदस्यता की पोजीशन स्थायी और अपरिवर्तनीय नहीं होती, कभी कभी एक साधारण टिप्पणी या सामान्य आधारों की पहचान किसी व्यक्ति की स्थिति को बाहरी ग्रुप से आंतरिक ग्रुप में बदल सकती है और उसे ग्रुप का सदस्य बना सकती है। दोस्तों, अब जब हमने सूफिया की डायरी पढ़ ली और उनकी बातें सुन ली हैं तो हमको पता चल चुका है कि अधिकांश ईरानी ग्रुप में या साथ रहना पसंद करते हैं या सूफिया इस चीज़ को किस नज़र से देखती हैं। अपने शोध के परिणामों से सूफिया इस नतीजे पर पहुंची कि संस्कृतियां आम तौर पर द्विध्रुवीय जुड़ाव में निहित होती हैं, जिसका एक ध्रुव व्यक्तिवाद है और दूसरा ध्रुव ग्रुप की अवधारणा में है, न कि राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा में। व्यक्तिवादी समाजों में सदस्यों के बीच रिश्ते कम होते हैं और बहुत करीबी रिश्ते केवल करीबी परिवार के सदस्यों के बीच ही देखे जाते हैं। ऐसे समाजों में लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना ख्याल रखें, अपने लिए खुद ही खड़े हों और उन ग्रुप्स को चुनें जिनसे वे जुड़ना चाहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया व्यक्तिवाद में सबसे आगे हैं। एक दूसरे से जुड़े रहना सामूहिकवादी समाज की निशानी है, जिनमें परिवार के भीतर स्थिर और एकजुट ग्रुप होते हैं। ऐसे समाजों में लोग ग्रुप के प्रति वफादार होते हैं और बदले में ग्रुप उनकी रक्षा और उनका समर्थन करता है। सूफिया की नज़र में ईरानी संस्कृति एक साथ रहने और ग्रुप के ध्रुव के करीब है और इसी दिशा की ओर बढ़ती रहती है। यह हकीकत कि ईरानी पारिवारिक ढांचे के भीतर ही काम करते हैं, उनको सामाजिक गतिविधियों और जनसंचार माध्यमों में अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। छोटे बच्चे शादी होने तक अपने परिवार के साथ रहते हैं, यहाँ तक कि ज़्यादातर शादी के बाद भी अपने माता पिता के साथ ही रहना पसंद करते हैं। इन समाजों में ये स्वीकार करना ही मुश्किल होता है कि एक अविवाहित बच्चा घर छोड़ देगा या तलाक के बाद बच्चा अकेले ही रहने लगेगा, चाहे वे अपनी संतानों के अभिभावक और जिम्मेदार ही क्यों ना हो। जब भी कोई जोड़ा तलाक लेता है तो प्रत्येक जोड़ा पुनर्विवाह होने तक अपने माता पिता के घर लौट जाता है, क्योंकि ईरानियों को भावनात्मक और आवश्यक समर्थन की जरूरत होती है जो केवल उनके खूनी रिश्तेदार ही दे सकते हैं। लोगों की पहचान परिवार में उनकी भूमिका से तय होती है। ईरान में पारिवारिक रिश्तों के महत्व का एक और उदाहरण परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल की जिम्मेदारी करीबी परिवार के सदस्यों की होती है, न कि किसी अजनबी पर यह जिम्मेदारी होती है। जो इस काम के बदले कुछ पैसे ले और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की सेवा करे। बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के बदले में उक्त व्यक्ति को समाज में बहुत मान सम्मान भी मिलता है, जबकि बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना एक प्रकार की जिम्मेदारी समझी जाती है, जिसका इस्लाम में बहुत बड़ा ईश्वरीय पारितोषिक भी मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अजनबी व्यक्ति बुजुर्गों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, बल्कि ये कम से कम उपयोगिता वाला एक वैकल्पिक समाधान होता है। कई परिवार न केवल बुजुर्ग माता पिता की उपस्थिति को अपने कंधों पर बोझ नहीं मानते, बल्कि अपने परिवार के विस्तार को देखते हुए उन्हें अपने घर में बरकत का कारण भी मानते हैं, क्योंकि जब वे बुजुर्ग परिवार के सदस्यों से मिलने जाते हैं तो साथ ही साथ परिवार के अन्य सदस्यों से भी उनकी मुलाकात हो जाती है। इस्लाम में इन दोनों चीज़ों की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। मिसाल के तौर पर पवित्र कुरान की आयतों में कई बार विनम्रता, अच्छाई और दयालुता का आदेश दिया गया है, खासकर उन माता पिता से जिनका हक उनके बच्चों की गर्दन पर होता है। मिसाल के तौर पर सूरह अल असरा में बच्चों को चेतावनी दी गई है कि वे बुढ़ापे में भी अपने माता पिता का अपमान न करें या आपत्तिजनक या अनुचित लहजे में बात न करें जिससे उन्हें ठेस पहुंचे और उनका सम्मान न हो सके। यही वजह है कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि मेरी उम्मत के बुजुर्गों का सम्मान मेरे लिए सम्मान है। सूफिया कहती हैं कि मैंने शोध के दौरान ईरानी संस्कृति में विनम्रता, एक दूसरे को पहले चीज़ें देने या स्थान देने के लिए तकल्लुफात करने जैसी चीज़ों के बारे में पाया कि ईरानी संस्कृति में ग्रुप का बहुत अधिक महत्व है। ईरान के लोगों की संस्कृति में कर्तव्य निष्ठा, समर्पण, निस्वार्थता, सहयोग और समुदाय से जुड़े होने जैसी सकारात्मक अवधारणाएं पाई जाती हैं। दूसरी ओर स्वार्थ और व्यक्तिवाद जैसी अवधारणाओं की निंदा की जाती है और उन्हें नकारात्मक रूप में जाना जाता है। ईरानियों के अनुसार परिवार समाज में देखी जाने वाली अधिकांश अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों और व्यवहारों का स्रोत है। इस प्रकार यदि परिवार में बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से और सामाजिक रूप से किया जाए तो जिम्मेदार और कुशल लोग अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल पोस सकेंगे। जिन बच्चों का व्यवहार सही नहीं होता उनके विपरीत जो बच्चे असभ्य, गैर जिम्मेदार, स्वार्थी, दूसरों के प्रति विचारहीन और सामाजिक जिम्मेदारी से परे होते हैं तो समझ लीजिए कि उनका पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं हो सका है। परिवार का महत्व मीडिया विशेषकर टेलीविजन से भी देखा जा सकता है, जिसको व्यापक स्तर पर देखा जाता है। घरेलू उपकरणों और मनोरंजन पार्क जैसी वस्तुओं और सेवाओं के विज्ञापन के अलावा जहां परिवारों को दिखाने की उम्मीद की जाती है, विज्ञापन देने वाली कंपनियां प्रचार और बैंक सुविधाओं से लेकर विज्ञापन तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए व्यवसाय और व्यापार तक सभी चीज़ों में एक ही परिवार की बातें पेश की जाती हैं। ये विज्ञापन आम तौर पर दादा दादी की मौजूदगी में परिवार को बड़ा और खुशहाल दिखाते हैं।